समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
छठ पूजा के आज दूसरे दिन खरना की रस्म निभाई जाएगी। सूर्यदेव और मां छठी मैया को अर्घ देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करेंगे। छठी मैया की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज बुधवार के दिन एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और अनीता आनंद, हम दोनों का नमस्कार।
Good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring you our forever exciting daily news and magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 6th of November. So let's begin the program with the headlines.
जी बिल्कुल, शुरू करते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
नीति आयोग विल बी लॉन्चिंग अ 15 डे जल उत्सव फ्रॉम टुडे टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। द कैंपेन फॉलोज द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु मूटेड द आइडिया ऑफ जल उत्सव ऑन द लाइन्स ऑफ नदी उत्सव ड्यूरिंग द थर्ड चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डिसम्बर लास्ट ईयर। Niti Aayog said Jal Utsav is being implemented in 20 aspirational districts and blocks from 6th to 24th of November. This is in partnership with the National Jal Jeevan Mission, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. The festival being launched across 20 states envisages community participation in preservation and protection of water resources.
भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे 30 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें पलामू से चंद्रमा कुमारी, हजारीबाग से कुमकुम देवी, दुमका से जूली देवी, लातेहार से बलवंत सिंह, खरसवां से अरविंद सिंह, हजारीबाग से बांकी बिहारी, बोकारो से चित्र रंजन साहब और हजारी प्रसाद साहू शामिल हैं। भाजपा की राज्य शाखा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा नेताओं को नामांकन पत्र दाखिल करने और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। 81 सदस्यों की विधानसभा के लिए 2 चरणों में इस महीने की 13 और 20 तारीख को मतदान कराया जाएगा। मतों की गिनती 23 नवम्बर को होगी।
The Indian Coast Guard ICG convened the 26th National Oil Spill Disaster Contingency Plan meeting in New Delhi yesterday. Director General ICG Paramesh Sivamani chaired the meeting, which focused on reviewing the country's preparedness to respond effectively to oil spill contingencies in the Indian waters. Mr. Sivamani reaffirmed the ICG's commitment to address regional threats, including marine oil and chemical spills. He also highlighted the need for enhanced cooperation among different stakeholders to strengthen partnerships, improve coordination, and adopt best practices in emerging technologies. 80 delegates from various ministries, central and state governments, ports and oil handling agencies participated in the meeting.
छठ पूजा को देखते हुए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। कल दिल्ली एनसीआर से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए लगभग 25 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी से कहा कि उत्तर रेलवे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकते हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं।
In Jammu and Kashmir, security forces launched a joint operation in the forest area of North Kashmir's Bandipora district last night after specific inputs regarding the presence of terrorists. Army Chinar Corps spokesperson confirmed on X that a joint operation was launched by Army, JNK Police and CRPF in general forest area of Chintawadi Katsan. The spokesperson said that based on specific inputs about the presence of terrorists, the security forces reached a suspected spot in the dense woods. The hiding terrorists opened fire leading to gunfight. The operation was still in progress when the reports last came in. Further details are awaited.
Jani mani lok gayika Sharda Sinha ka kal raat Nayi Delhi mein nidhan ho gaya. Ve 72 varsh ki thi. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। भोजपुरी और मैथिली लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
इन बॉक्सिंग इंडियन फ्यूजलिस्ट मनदीप जांगरा हैज क्लिंच्ड द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल इन द केमन आइलैंड्स इन यूके। Jangra defeated Britain's Conor McIntosh 10-0 yesterday. With this, Mandeep became the first Indian pugilist to become a world champion in any pro boxing event category. Mandeep, the 2014 Commonwealth Games silver medalist, has faced only one defeat in his professional career so far. He has won 11 out of his 12 fights, with 7 being knockout victories.
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के लिए नीलामी इस महीने की 24 और 25 तारीख को सऊदी अरब के जेद्दाह में होगी। बीसीसीआई ने कल ये घोषणा की। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब नीलामी विदेश में आयोजित की जाएगी। आईपीएल 2024 से पहले भी नीलामी दुबई में की गई थी। 1165 भारतीय और 409 विदेशी खिलाड़ियों सहित कुल 1574 क्रिकेट खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपनी सहमति दी है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी रिटेन किए गए खिलाड़ियों सहित अधिकतम 25 खिलाड़ियों की एक टीम बना सकती है, जिसमें से कुल 204 स्लॉट नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे। इन स्लॉट को भरने के लिए 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल मिलाकर लगभग 641 करोड़ 50 लाख रुपए होने का अनुमान है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं अनीता आनंद।
थ्री वुमेन फ्रॉम द यूएस ऑफर्ड प्रेयर्स एट अ टेम्पल इन तुलसेंद्रपुरम, द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस। द वुमेन ऑफर्ड प्रेयर्स एट द श्री धर्मसस्ता टेम्पल। पीवी गोपालन, द मेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ कमला हैरिस एंड ऑल्सो फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट, रिसाइडेड इन द विलेज ऑफ तुलसेंद्रपुरम in Thiruvarur district. The state government has sanctioned 13.93 crore rupees for implementation of the Tamil Nadu Artificial Intelligence Mission, aiming at leveraging AI in education, employment, industry, research and medicine. The mission, led by the Chief Minister M.K. Stalin, will be implemented in collaboration with Tamil Nadu E-Governance Agency, ICT Academy and ELCOT. Key areas identified for AI technology adoption include policy making, capacity building, skill development, community engagement and startup support, innovation and infrastructure development for computing and storage. The objective of the mission will be to position the state as one of the leading AI hubs in the next 5 years. The mission will provide a platform to various stakeholders, including government, academia, user, enterprises, innovators and investors, to connect, collaborate for their own interest. The Karnataka State Archives Department will organize an exhibition of historical documents and photographs in Mysuru from November 7 to 9. The exhibition is organized to commemorate the Golden Jubilee celebrations of renaming Mysuru State as Karnataka on 1st of November in 1973. The director of the Archives Department, Gavi Siddhaya, will inaugurate this 3 days exhibition. There will be 65 exhibits for the viewers to view these documents and photographs dating back to the Wadiyar kings of Mysuru to the present day. It will take the visitors through the history of Karnataka from the days of Wadiyar kings and its transition to the democratically elected government, unification of Karnataka based on its vernacular identity, and finally its renaming as Karnataka. The archive department has taken up the voluminous task of saving these documents in the digital format. As on date, it has digitized over 1 crore pages of historical documents and photographs, and the process continues. These digitized documents and records are related to the donations, diaries, accounts, books, itinerary of rulers, pilgrimage, and details of the rituals of the royal family that ruled Mysuru before independence, their marriage invitations, Dasara celebrations, and information on heritage buildings in the city of palaces. Telangana Health Minister D. Raja Narasimha has announced that steps are being taken to increase the number of food safety officers in the state. He said a special cell will be established in all collectorates to handle food safety complaints and their resolutions. He distributed Food Safety and Standards Authority of India FSSAI licenses and registration certificates to food vendors in Hyderabad yesterday. Speaking on the occasion, the minister emphasized the importance of food safety. He said there should be no compromise on this matter and businesses must maintain both food hygiene and environmental hygiene. He made it clear that the government will not spare anyone who breaks the rules. He said the food safety lab at Nacharam is being modernized and 3 new food testing labs will be set up in Warangal, Nizamabad and Mehboob Nagar. In addition, he said 5 new mobile food testing labs are being introduced. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata. Over to Ravi Kapoor.
Dhanyavaad, Anita. शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल गोल मार्केट के मुख्य भवन को संग्रहालय के रूप में विकसित करने के कार्य की समीक्षा की। श्री सक्सेना ने बताया कि इमारत की मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोल मार्केट भारत की समृद्ध विरासत और औपनिवेशिक युग के बाद से दिल्ली के विकास का एक प्रमाण है। उपराज्यपाल ने पुनर्विकसित और पुनर्स्थापित गोल मार्केट के अगले साल तक दिल्ली के लोगों के लिए खुल जाने की उम्मीद की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हाथी परिवार की मूर्तियों का अनावरण किया। इस मौके पर दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि ये मूर्तियां राजधानी के सौंदर्यकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में करीब 20 स्थानों पर 35 मूर्तियों की स्थापना की गई है, जिनमें भगवान बुद्ध, संगमरमर से बने शेर और रथ की मूर्तियों जैसी शानदार कृतियां शामिल हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि शहर के पुनर्विकास से सिर्फ सौंदर्य को बढ़ावा नहीं बल्कि वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज से एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर निगरानी के साथ उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम सहित विभिन्न एजेंसियों को तैनात किया गया है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए श्री राय ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेता आज मुंबई में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अतुल लौंधे ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को होने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई में एमवीए सहयोगियों की ये पहली संयुक्त रैली होगी। कांग्रेस पार्टी इस रैली में अपने चुनावी घोषणा पत्र की घोषणा कर सकती है। मुंबई का सेना भर्ती कार्यालय 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक विरार के जीवदानी ग्राउंड में अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया का दूसरा चरण आयोजित करेगा। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये भारतीय सेना भर्ती रैली मुंबई, मुंबई उपनगर, नासिक, ठाणे, पालघर, रायगढ़, धुले और नंदुरबार के अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए हैं, जिन्हें अप्रैल 2024 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफलतापूर्वक शॉर्टलिस्ट किया गया था। बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। कोलकाता के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में रक्षा प्रदर्शनी ईस्ट टेक 2024 का कल उद्घाटन किया गया। पूर्वी सेना कमान ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पूर्वी सेना कमान के प्रमुख जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री अरूप विश्वास ने मेले का उद्घाटन किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और अनीता के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा, रात में धुंध, लेकिन मुख्य रूप से आसमान साफ रहने की संभावना है। और अनीता, जब मैं आज आ रहा था, मुझे लगता जब आप भी आ रही थी तो रास्ते में आपको हल्का फुल्का कोहरा जरूर मिला होगा।
जी जी, द टेम्परेचर इज डिपिंग नो।
जी, तो दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अनीता,
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1763 में आज के दिन ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया। 1813 में आज के दिन मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1844 में आज के दिन स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया। 1860 में आज के दिन अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। और 1903 में आज के दिन अमेरिका ने पनामा के स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की।
इन 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन।
1943 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे।
इन 1946 गांधी जी लीव फॉर नाउकाली, इशू स्टेटमेंट ऑन पार्शियल फास्ट, नाउकाली टूर बिगन्स।
1949 में आज ही के दिन यूनान में गृह युद्ध समाप्त हुआ।
इन द ईयर 1951 जज एम पतंजलि शास्त्री बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही हेल्ड दिस ऑफिस टिल 3/1/1954.
1962 में आज के दिन राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई।
एंड इन 1997 चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम आफ्टर अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली डिसाइड टू ग्रांट ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड इन द ईयर 2000 बुद्धदेव भट्टाचार्य अस्यूम्स ऑफिस एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। In the same year, Richa Mishra creates a national record in the women's 400 meters individual medley in 5.15.28 seconds in the 55th Senior National Aquatic Championships in Calcutta.
सन 2000 में आज के दिन ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद को छोड़ा। और 2013 में आज ही के दिन महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर सी एन राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो पुण्यतिथियों में आज सबसे पहला नाम है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे के सुंदास कन्हैया का। आपका जन्म तो हुआ था 3 नवंबर 1890 को, लेकिन निधन हुआ 6 नवंबर 1951 को। वे 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इनके पिता का नाम जेके सुंदास था। इनके पिता श्यामलदास कॉलेज में पहले संस्कृत प्राध्यापक रहे और फिर बाद में प्रधानाचार्य के रूप में काम करते रहे। जे एच जे कन्हैया ने 1910 में श्यामलदास कॉलेज से बीए किया। उसके बाद 1912 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से LLB और 1913 में उसी संस्थान से LLM भी किया। सन 1915 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस शुरू की और एच जे कन्हैया इंडिया लॉ रिपोर्ट्स के कार्यकारी संपादक भी थे।
एंड टुडे इज आल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्योतर इलीच चायकोफ्स्की। He was born in 1840 and passed away in 1893 on this day, that is 6th of November, the Russian composer of the Romantic period. He was the first Russian composer whose music would make a lasting impression internationally. Tchaikovsky wrote some of the most popular concert and theatrical music in the current classical repertoire, including the ballets like Swan Lake, The Nutcracker, the 1812 Overture, his first piano concerto, violin concerto, the Romeo and Juliet, Overture Fantasy, several symphonies, and the opera Eugene Onegin. Although musically precocious, Tchaikovsky was educated for a career as a civil servant, as there was little opportunity for a musical career in Russia at the time and no system of public music education. I'm playing a snippet from his ballet Swan Lake. Opportunity for such an education, that is Western education, arose, he entered the nascent St. Petersburg Conservatory, from which he graduated in 1865. The formal Western-oriented teaching that Tchaikovsky received there set him apart from composers of the contemporary nationalist movement embodied by the Russian composers of the Five, with whom his professional relationship was mixed. Tchaikovsky's training set him on a path to reconcile what he had learned with the native musical practices to which he had been exposed from childhood. From that reconciliation, he forged a personal but unmistakably Russian style.
और अनीता, अब बात कर लेते हैं हिंदी फिल्मों के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार के बारे में, जिनका जन्म तो हुआ था 9 जुलाई 1938 मुंबई में, लेकिन इन्होंने इस संसार से विदा ली 6 नवंबर 1985 मुंबई में ही। और इनका वास्तविक नाम हरिभाई जरीवाल था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये अपने दूसरे नाम संजीव कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार ने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार की भूमिकाओं को निभाया। इनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में कोशिश, शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, खिलौना, मंचली, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, आंधी, मौसम, विधाता, दस्तक, नया दिन नई रात आदि हैं। संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए गए। तो आइए ना फिर सुन लेते हैं संजीव कुमार पर फिल्माए गए फिल्मी गीतों की एक छोटी सी मेडली।
तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, आए तब सुन तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में।
फसाना बन गया अच्छा
अच्छा जी,
एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा।
His double role in the film Angoor was listed among the 25 best acting performances of Indian cinema by Forbes India on the occasion of celebrating 100 years of Indian cinema. Sanjeev Kumar won several major awards, including 2 National Film Awards for Best Actor for his performances in movies like Dastak and Koshish. Unlike his peers, Kumar did not mind playing roles that were non-glamorous, such as characters well beyond his age. Movies as iconic character like Ravi mentioned Thakur in Shole, Arjun Pandit, Trishul, along with the remakes of Tamil films also into Hindi. Ye Hai Zindagi, Devta, Ram Tere Kitne Naam exemplify his versatility. He also did suspense thriller films such as Shikar, Uljan and Trishna to name a few.
Ji, aur ab agli personality aapke paas kaun si hai?
Ji, today is the birth anniversary of Ardair Sher Faramji. Khabardar was the Parsi poet from India. He wrote mainly in Gujarati, but also in English and Marathi. He wrote under the pen name of Adal, living in Bombay and Madras. He wrote in different styles of poetry and published around 40 books. He wrote sonnets about his religion, Zoroastrianism also. He wrote under several pen names, chiefly under Adal. His other pen names were Motalal, Khojo Bhagat, and his Gujarati poem, Jaya Jaya Vase Gujarati, and others depict Gujarati ethnic pride and is widely popular in Gujarat also. He wrote in modern Gujarati instead of Parsi Gujarati. His first work was poetry collection, Kavya Rasika, which followed the style of Dalpatram in 1901.
और अनीता, अब बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना में बहुत ही प्रसिद्ध पायलट रहे विजय कुमार कार्णिक के बारे में, जिनका जन्म हुआ 6 नवंबर 1939 नागपुर महाराष्ट्र में। उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। भुज हवाई पट्टी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हवाई हमलों में नष्ट हो गई थी, जिसमें पाकिस्तानी हमलावरों ने नेपलम बम गिराए थे। भुज हवाई अड्डे के हमले की तुलना पर्ल हार्बर पर हमले से की जाती है और 14 दिनों में हवाई क्षेत्र पर 92 बमों और 22 रॉकेटों के हमलों के साथ 35 बार छापेमारी की गई। लेकिन विजय कार्णिक ने स्थानीय क्षेत्रों की 300 महिलाओं की मदद से 3 दिनों के भीतर ही भुज हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण कर दिया था।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना,
अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना।
कंधों से।
And today is the birthday of Ethan Greenhawk, the American actor, author and film director. He made his film debut in Explorers in 1985. Before making a breakthrough performance as Dead Poets Society, Hawk starred alongside Julie Delpy in Richard Linklater's Before Trilogy from 1995 to 2013. A snippet of a song from the movie Reality Bites.
और अब चलते चलते आज का विचार कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और अनीता आनंद को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की।
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।